थ्यूजीवारा परिवार का उत्थान एवं पतन। थ्यूजीवारा परिवार, जो जापान में सम्राट के बाद सर्वाधिक गौरवपूर्ण समझा जाता है, अपने परिवार की दैवीय उत्पत्ति का दावा करता है। 7वीं शताब्दी से ही ये प्रशासन में व्यापक रूप से अधिकार जमाने लगे थे। प्रारंभ के शक्तिशाली राजाओं के पश्चात, जिन्होंने राज्य की प्रशासन व्यवस्था के पुनर्गठन में काफ़ी योग दिया था, जैसे जैसे आशक्त राजाओं ने उनका स्थान ग्रहण करना शुरू किया, यह परिवार क्रमशः प्रशासन में अपने प्रभुत्व को अधिकाधिक दृढ़ करता गया। यद्यपि इसके हाथ में बहुत ही कम सैनिक पद थे, क्योंकि वे सामाजिक दृष्टि से निम्न कोटि के समझे जाते थे, परंतु इसने धीरे धीरे सभी प्रमुख नागरिक महत्व के पदों पर अधिकार जमा लिया, जिससे इसकी आगामी पीढ़ी के हाथ में अधिक सत्ता आ गई। इसने प्रांतों के प्रमुख गवर्नरों के पदों तथा राज दरबार के प्रमुख पदों को भी हस्तगत कर लिया। पहले तो इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता और बाद में उन्हीं पदों पर पुनः उनकी नियुक्ति की अनुमति दे दी जाती, और अंततः विभिन्न पदों पर जीवन भर उन्हीं व्यक्तियों का अधिकार बना रहता, और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात ये पद उन्हीं के वारिसों को दे दिए जाते थे। फ्यूजीवारा ने सरकार में सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने सदस्यों को भर दिया और इन पदों को अनुवांशिक बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अभिजात वर्ग की शक्ति को छिन्न करने तथा राजा के पक्ष में दृढ़ता प्रदान करने के लिए जो उपाय किए गए थे, वही उपाय लक्षित उद्देश्य के प्रतिकूल सिद्ध हुए। राजा की परिषद के सभासद फ्यूजीवारा थे, इसलिए उन्हें सभी आवेदनों को राजा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व खोलने का अधिकार था। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि राजाओं की पत्नियों का चयन उन्हीं के परिवारों की स्त्रियों में से हो, और राजा के उत्तराधिकारी का चुनाव भी फ्यूजीवारा माता की कोख से उत्पन्न पुत्रों में से ही हो। आज भी रानी उसी परिवार की है, और उसकी पूर्ववर्ती अधिकांश रानियां भी हजार साल से अधिक समय से उसी परिवार की रही है। अंततः इसी कुटुंब के सदस्यों की राजा की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होती थी। इस प्रकार केवल नाम मात्र को ही राजा का शासन होता था, जबकि वास्तव में वे ही राज्य के शासक होते थे। यह सत्य है कि इस परिवार के लोगों ने कभी भी राज सिंहासन पर अधिकार जमाने की इच्छा नहीं की, लेकिन चूंकि राजा का पद अधिक पूज्य हो गया था, इसलिए उनकी यह कोशिश रही कि इस उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का वास्तविक प्रशासन के मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। और अंततः जब ही राजा प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करने योग्य आयु में पहुंचता, उसे बौद्ध भिक्षु के रूप में शपथ ग्रहण करके बौद्ध विहार में एकांत जीवन बिताने के लिए बाधित होना पड़ता, ताकि उसका स्थान कोई ऐसा नाबालिग व्यक्ति ग्रहण कर ले जो फ्यूजीवारा की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा न उपस्थित कर सके। अनेक बार ऐसा हुआ कि एक ही समय में अनेक पूर्ववर्ती राजा एक साथ जीवित रहे। फ्यूजीवारा परिवार के लोगों ने यह प्रभुत्व बिना किसी संघर्ष के नहीं प्राप्त किया था, क्योंकि समय समय पर राजाओं ने राज्य के मामलों में दखल देने का प्रयत्न किया। अनेक अवसरों पर अन्य परिवार के लोगों ने फ्यूजीवारा परिवार के प्रभुत्व को बलात् छीनना चाहा, परंतु फ्यूजीवारा परिवार के सदस्य प्रशासनिक पदों पर बने रहे और उन्हें वहां से अपदस्थ करने में कोई सफल न हो सका। 19वीं शताब्दी में पुरानी प्रणाली के समाप्त होने तक राज दरबार के उच्च पद उन्हीं के द्वारा भरे जाते रहे, परंतु सैनिक वर्ग द्वारा नियंत्रित एक नई शासन पद्धति के लागू होने पर उनका प्रभुत्व छिन्न हो गया। यह परिवर्तन क्रमिक विकास के पश्चात ही संभव हो सका। इसके लिए कुछ अंश तक वह अशक्त पद्धति जिम्मेदार थी, जिसका फ्यूजीवारा ने स्वयं निर्माण किया था, और कुछ अंश तक यह सैनिक वर्ग की शक्ति के उत्कर्ष के कारण भी संभव हुआ। फ्यूजीवारा के उत्कर्ष का युग विलासिता से पूर्ण था। राज दरबार के अनुरक्षण के लिए अंधाधुंध व्यय किया जाने लगा। विशालकाय राज प्रसादों का निर्माण किया गया और रहन सहन का अत्यधिक उच्च स्तर कायम रखा गया। राज दरबार के संभ्रांत वर्ग के लोग काव्य रचनाओं, कुसुमोत्सवों, प्रणय संबंधों की जोड़ तोड़ तथा जुए आदि में व्यस्त रहते थे। विविध प्रकार की कलाओं और मनोरंजन के साधनों का चीनी ढंग पर विकास हुआ, जो वहां के अधिकांश कलात्मक विकास का आधार था, जिसकी 19वीं शताब्दी के अंत में जापान के साथ संपर्क में आने वाले पश्चिम के लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस काल में जापान में उत्कृष्ट कोटि के वस्त्रों तथा सुंदर चित्रों और नक्काशी के सामान का निर्माण हुआ। वास्तुकला में उन्होंने उन्नति की और बहुत बड़ी संख्या में राजप्रसादों और चत्तों का निर्माण किया। संगीत के क्षेत्र में परिपूर्णता प्राप्त की गई, नर्तकियों का महत्व बढ़ा और उन्हें पेशे के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प दर्शन करने, हिमपात देखने तथा चंद्रिका का रसास्वादन करने के लिए नए नए त्यौहार शुरू किए गए। बौद्ध मंदिरों और विहारों तथा व्यापक रूप से किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत अधिक धन व्यय किया जाता था। वृहदाकार बहुमूल्य सोने चांदी की प्रतिमाओं के निर्माण का उस समय बहुत प्रचलन था। कभी कभी तो वहाँ के राजस्व का आधा था, इससे भी अधिक भाग धार्मिक कार्यों के लिए खर्च हो जाता था। ज्यों ज्यों राज दरबार अधःपतन की ओर अग्रसर होता गया, इसकी धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति आस्था भी अधिक होती गई। इस समय बौद्ध धर्म जितना लोकप्रिय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इस समय राज दरबार तथा उस पर हावी फ्यूजीवारा परिवार के लोगों का राजधानी की आसपास स्थित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य प्रांतों पर से धीरे धीरे नियंत्रण समाप्त हो रहा था। राज दरबार तथा विशेष रूप से बौद्ध मंदिरों और विहारों के बढ़ते हुए खर्च की पूर्ति के लिए जनता पर करों का अत्यधिक बोझ पड़ रहा था। देश का विस्तार होता जा रहा था और इसलिए अतिरिक्त अधिकृत क्षेत्रों पर प्रशासन व्यवस्था में सरकार का व्यय अत्यधिक बढ़ गया था। सरकार के प्रशासनिक व्यय में हुई वृद्धि के अनुपात में राजस्व में वृद्धि नहीं हुई थी, जिसके फलस्वरूप बढ़ते हुए कर का भार कुछ कृषक वर्गों पर ही दिन प्रतिदिन अधिक होता गया। इस समय यहाँ धीरे धीरे यूरोप के मध्ययुगीन सामंतवाद के ही समान एक कर मुक्त जागीर प्रथा का विकास हो रहा था। सन 645 के सुधार के अधीन एक निश्चित समय के अंतर से देश की कृषि योग्य भूमि को वहाँ के लोगों में पुनः वितरित करने की व्यवस्था की गई। कुछ काल तक तो यह योजना भली भांति कार्यान्वित होती रही। बाद में इस योजना का त्याग दिया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों की जो भूमि कृषि योग्य बनाई गई उस पर धीरे धीरे शासक वर्ग के कुछ लोगों का आधिपत्य हो गया। राष्ट्र के विकास के साथ साथ अंततः इस कृषि योग्य भूमि का विस्तार बहुत अधिक बढ़ गया। अब कुछ लोगों को उनकी सेवाओं के प्रतिदान स्वरूप या राज दरबार का विशिष्ट कृपा पात्र होने के कारण यह भूमि जागीर के रूप में दी जाने लगी, जिसे वे अपने वंशजों को हस्तांतरित कर सकते थे। इसी प्रकार बहुत बड़ा भूभाग अस्थायी संपत्ति के रूप में मंदिरों और विहारों के आधिपत्य में था। समय समय पर कानून द्वारा एक निश्चित समय के अंतर पर भूमि के वितरण की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, परंतु इसका कोई अस्थायी समाधान न निकल सका। प्रायः जागीरों के मालिकों ने अपने सीमापवर्ती भूमि पर बलात् कब्जा करके अपनी भू संपत्ति में अभिवृद्धि की। इन जागीरों को आंशिक रूप से या पूर्णतया कर से छूट प्राप्त थी और इन पर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों का किसी भी प्रकार का नियंत्रण न था। मुख्य रूप से इस प्रकार की छूट या तो मंदिरों की भूमि को प्राप्त थी या ऐसी जागीरों को थी जो वस्तुतः सरकार द्वारा प्रदत्त हो, जिसकी औपचारिक शासन पत्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। कई छोटे छोटे जमींदार अव्यवस्था से सुरक्षित रहने या कर से बचने के लिए अपनी भूमि अधिक सशक्त सामंतों या बिहारों को सौंप देते थे और पुनः उनसे जागीर के रूप में ले लेते थे। यह प्रथा लगभग यूरोप की सामंत प्रथा के समान ही थी। इस प्रकार कुछ ही समय में राष्ट्र का अधिकांश भाग करमुक्त और प्रतिरक्षित जागीरों से भर गया, जिन पर सरकार का कोई वास्तविक नियंत्रण न था। प्रायः गवर्नर का अपने प्रांत की 1% या कभी कभी इससे भी कम भूमि पर नियंत्रण होता था। अधिकांश सामंत केंद्रीय सरकार से केवल राजा के प्रति औपचारिक निष्ठा द्वारा ही संबद्ध थे। उनकी अपने निजी कर व्यवस्था थी। वे आपसी लड़ाई झगड़ों का फ्यूजीवारा द्वारा नियंत्रित दरबार के हस्तक्षेप के बिना ही अपरिष्कृत तरीकों से निर्णय कर लेते थे। 11वीं शताब्दी के अंत के आसपास केंद्रीय शासन का पतन काल आ पहुंचा था। जागीरों के अलावा अन्य भूमि पर आरोपित बोझिल करों से बचने के दो ही मार्ग थे, लूट मार और सैन्य सेवा। लुटेरे खुलेआम राजधानी के बाजारों में ही लूट मार मचाते थे। साम्राज्य पर आधिपत्य के लिए सामंती संघर्ष। जिन शताब्दियों में फ्यूजीवारा परिवार के लोग राज दरबार में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी समय दूरवर्ती प्रदेशों के योद्धा परिवार अपने स्थिति को दृढ़ बनाने में संलग्न थे और धीरे धीरे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता जा रहा था। 7वीं और 8वीं शताब्दी के सुधारों में सेना पर पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपने का प्रयत्न किया गया था, परंतु इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। केंद्रीय प्रशासन की शक्ति के ह्रास तथा बढ़ती हुई अव्यवस्था के फलस्वरूप बड़ी बड़ी करमुक्त जागीरों के स्वामियों को अपनी जागीरों के आरक्षण तथा पड़ोसियों के विरुद्ध सहायता के लिए अपने सैनिकों पर निर्भर होने को बाध्य होना पड़ा। इन जागीरों पर नियमित रूप से पेशेवर सैनिक रहते थे। इनकी भर्ती विभिन्न स्रोतों से की जाती थी। कुछ तो पुलिस के लोग ही रख लिए जाते थे, कुछ जमींदार के अपने आश्रित व्यक्ति होते थे, कुछ ऐसे प्रदेशों के खानाबदोश लोग होते थे जहाँ आजीविका के साधन समाप्त प्राय हो चुके थे, और कुछ ऐसे साहसी व्यक्ति भी होते थे जिन्हें अपने प्रदेश में उन्नति की गुंजाइश नहीं दिखाई देता था। धीरे धीरे इन पेशेवर सैनिकों का नियंत्रण नवीन सम्राट वर्ग के हाथों में आ गया। ये लोग पूर्णतः सैनिक तथा सामंत वर्ग के थे और पूर्ववर्ती नागरिक सम्भ्रांत वर्ग से, जिसका केंद्र स्थान क्योतो था, नितांत भिन्न थे। इस सैनिक अभिजात वर्ग की स्थापना राज परिवार के लोगों ने ही की थी, जो अब कुछ निम्न कोटि के अभिजात वर्गों में गिने जाते थे। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए राजधानी से दूरवर्ती प्रांतों में जा बसे थे और वहां स्थानीय अधिकारी के रूप में या अनुपस्थित नागरिक सामंतों की जागीरों के प्रबंधक के रूप में कार्य करने लगे थे। कुछ समय बाद जिन जागीरों का प्रबंध इनके हाथों में था, उनके अथवा कुछ अन्य नई जागीरों के ये वास्तविक मालिक बन बैठे, और साथ ही इन्होंने सामान्य अव्यवस्था के बीच सुरक्षा के एकमात्र साधन सैनिक वर्ग की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। सर्वाधिक शक्तिशाली जागीरें कुछ तो पश्चिम में थी, जहाँ नई कृषि योग्य भूमि तैयार हो रही थी, तथा कुछ उत्तर में थी, जहाँ आइनू लोगों को उस प्रदेश से बाहर खदेड़ने के लिए लंबा संघर्ष चल रहा था। ये सब जागीरें राज दरबार की भ्रष्ट विलासिता से काफी दूर थी। पारस्परिक लड़ाइयों और आइनू लोगों के साथ चल रहे निरंतर संघर्ष के कारण एक ऐसे सैनिक वर्ग का विकास हो रहा था जो कठिनाइयों से जूझने को तत्पर तथा अपने नेताओं के प्रति वफादार था। योद्धा वर्ग, जिसे वहाँ बुशी कहा जाता था, बाद में एक वंशागत जाति बन गया जिसमें अन्य जाति के लोग सम्मिलित नहीं हो सकते थे। उनकी अपने एक नीति संहिता थी जो बाद में विकसित बुशीदो यानी बुशी अर्थात योद्धाओं का मार्ग का आधार थी, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। फ्यूजीवारा द्वारा नियंत्रित शासन प्रणाली के आंतरिक ह्रास के बाद अब केवल समय की ही बात रह गई थी कि सैनिक सरदार कब साम्राज्य पर प्रभुत्व जमाने के लिए संघर्ष करे। 12वीं शताब्दी के मध्य के आसपास क्योतो के पतन को छिपा रखना असंभव हो गया। बौद्ध विहार तथा शिंतो मंदिर सशस्त्र भिक्षुओं और अनाचारी व्यक्तियों के आश्रय स्थल बन गए। उन्होंने शक्तिहीन राजधानी को आतंकित कर रखा था। ऐसे संकट के समय वहां पर शांति स्थापित करने के लिए विपत्तिग्रस्त राज दरबार को सशक्त सैनिक सरदारों को आमंत्रित करना पड़ा। सरदारों ने सहस्त्र इस कार्य को स्वीकार किया। युद्ध प्रिय भिक्षुओं का दमन कर दिया गया। राज दरबारी षड्यंत्रों और फुजीवारा के उच्च पदासीन व्यक्तियों के बीच संघर्ष के कारण गृह कलह छिड़ गया, जिससे सरदारों को हस्तक्षेप करने का और भी अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। अंततः राजधानी तथा राजा पर अधिपत्य जमाने के लिए वे आपस में जूझ पड़े। अतीत काल से ही राज परिवार के प्रति लोगों में इतने जबरदस्त श्रद्धा थी कि किसी के मन में राज सिंहासन या राज प्रतिनिधि के पद पर अधिपत्य जमाने का विचार नहीं उठा, क्योंकि राज प्रतिनिधि का पद भी वंश परंपरा से फ्यूजीवारा परिवार के पास ही था। फिर भी सैनिक वर्ग के सरदारों ने अपनी स्थिति इतनी दृढ़ कर ली थी और उसका प्रशासन पर इतना अधिक नियंत्रण था कि राजा और राज दरबारी अपने प्राचीन पदों पर कायम रहते हुए भी प्रशासन में अधिक हस्तक्षेप करने की आशा नहीं रख सकते थे। इसके बाद जो लंबे गृह कलह हुए, उनमें सैनिक वर्ग के परिवार ने सर्वोच्च प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। अब ताइरा परिवार के हाथ में शासन की बागडोर आ गई और इसने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी मिनामोतो का प्रश्रय पाकर सिर उठाने वाले सभी तत्वों का यथासंभव संहार किया, क्योंकि केवल मिनामोतो ही सत्ता की होड़ में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। फिर भी कुछ सशक्त व्यक्ति उसकी दृष्टि से बचे रहे, जिनमें दो व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम योशित्सुने था, जिसे जापान के लोग अपने देश का महानतम सैनिक कप्तान समझते थे, तथा दूसरा उसका सौतेला भाई योरितोमो, था जिसने बाद में सर्वोच्च सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इन महत्वपूर्ण वर्षों में किए गए वीर पुरुषों के पराक्रम पूर्ण कृत्यों का बखान करना जापान के कथाकारों के लिए विशेष उल्लास का विषय रहा है, और प्रत्येक पीढ़ी के युवकों के समक्ष इनका सविस्तार वर्णन किया जाता है।